వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ
अभी हम जो बोलने वाले हैं उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी गुरु परंपराओं के आचार्यों को प्रणाम करते हैं, और वो प्रणाम इसलिए करते हैं कि हम हमारी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा कोई पिकनिक नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो तीर्थ यात्रा को तीर्थ यात्रा बनने के लिए और तीर्थ यात्रा को दिव्य अनुभव प्राप्त होने के लिए संतों की कृपा बहुत आवश्यक है। बिना संत की कृपा से कोई दिव्य काम सफल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम आज यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसके पहले हम सभी आचार्यों के प्रणाम मंत्र यहाँ पर दे रहे हैं। उन प्रणाम मंत्रों को हृदय से हम पुकारेंगे। उनके ऊपर लिखा गया है कि ये प्रणाम किसका है। फॉर एग्जाम्पल श्री रूप प्रणाम, यानी रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम। पहला प्रणाम गुरु गुरु जी के लिए है। हो सकता है आपके गुरु अलग अलग होंगे, तो सब गुरुओं के लिए प्रणाम अपने गुरु के लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी, फिर भक्ति सिद्धांत जी का, सरस्वती महाराज, ये सबका नाम लिखा है। और आप प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे उसके बाद उनके गुरु का नाम है, फिर उनके गुरु का नाम है, फिर उनके गुरु का नाम है, सभी वैष्णवों का नाम आएगा। उसके बाद में आगे जाकर मैं बताऊंगा, जैसे मैं बीच में थोड़ा ब्रेक लूंगा। ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप किसको प्रार्थना कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और वो पता होने के बाद जब प्रार्थना करेंगे तो उस व्यक्ति की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। हमें कोई भी काम इस यात्रा में रिवाज की तरह नहीं करना है, रीति रिवाज रिचुअल्स की तरह नहीं करना है। हमें हर काम इस यात्रा में हृदय से करना है, आत्मा से करना है। और वो आत्मा से हृदय से जब कार्य करेंगे तो उसका जो संबंध है वो भगवान से होगा। इसीलिए ये प्रार्थना भी बड़े हृदय से हम करेंगे और सभी आचार्यों की कृपा ग्रहण करके हमारी यात्रा शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। ओम अज्ञान विरामस्य ज्ञानं जनकलापय चक्षुरुद्मीलनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा प्रदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सदनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीपार्श्वमानवी देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान वायिने भगवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुभवभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनकारिणे रूपानुभव विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मुक्तये विरक्तलंबक सांबोधे पादंबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय ते गौर आविर्भाव भूमेश्वर निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णमेवं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः पञ्चतत्त्वं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अब इसमें कुछ मंत्र नहीं छपे गए हैं बाय मिस्टेक, तो उसमें से पहला मंत्र है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंत्र, इसको आप मेरे बाद में दोहराएंगे। जयतां सुरतौ पंगो मम मंदम मतिर्गति मम मंदम मतिर्गति। सब लोग नहीं बोल रहे, मत सर्वस्व पदम भोजौ मत सर्वस्व पदम भोजौ दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः दिव्यात् कल्पद्रुमादः दिव्यात् कल्पद्रुमादः आई बोलिए दिव्यात् कल्पद्रुमादः श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ कृष्णादिभि सेव्यमानौ स्मरामि। एक बार दोबारा बोलने से नुकसान नहीं। दिव्यात् वृंदारण्य कल्प प्रमादः श्रीमान् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ कृष्णालिभिः सेव्य देव के बाद में गोविंद देव का मंत्र है। श्रीमान सब लोग बोलिए श्रीमान
रसारंभी
पंसी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रिये सुन गोपीनाथ श्रिये सुन
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे
हरे रामा
हरे
रामा राम रामा हरे हरे। तो आप सब लोगों का श्री जयपुर यात्रा में स्वागत है। मुंबई में हमने एक प्रवचन दिया था इसके बारे में, लेकिन आप सब लोग मुंबई के बाहर से भी हो इसलिए आप नहीं थे यहाँ पर, तो संक्षेप में हम उसको दोहराएंगे। जो बोला है वो लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, वो आप ले सकते हैं बाद में, लेकिन संक्षेप में अभी यात्रा शुरू करने के पहले हमारी मति हमारी आत्मा हमारी चेतना को तैयार करना आवश्यक है। गर्म कपड़े हम लेके आए हैं, टूथब्रश भी लेके आए हैं और कपड़े भी लेके आए हैं, ये तो बैग की शरीर की तैयारी है, लेकिन जो आत्मा की तैयारी है वो बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यात्रा जो है वो भगवान के शरण को ग्रहण करने के लिए की जाती है। यात्रा कोई साइट सीइंग नहीं है, मतलब घूमने के लिए नहीं, यात्रा जो है वो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए की जाती है। और हम लोग यहाँ पर श्री गोविंद देव के चरणों का आश्रय लेने के लिए आए हैं। श्री गोविंद देव भगवान की
जय,
श्री राधा गोविंद भगवान की
जय।
तो सबसे पहली बात तो ये है, यात्रा में हम जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए नम्रता बहुत आवश्यक है। और जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और भी कुछ हमको काम करना है, वो ये है कि कोऑपरेशन, जो भक्त लोग यात्रा में आए हैं, जो जयपुर में आ गए हैं और यात्रा करने के लिए आए हैं, कोई बिजनेस करने के लिए कोई और कुछ काम करने के लिए नहीं आए हैं, जितने भी लोग आए हैं वो सब यात्रा करने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि से आप सब लोग भक्त हैं। तो यात्रा में भक्तों को सहयोग देना बहुत आवश्यक है। अपने आप को पीछे रखे, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बालक हैं, जो स्त्रियां हैं, जो अबला हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन सबको पहले मदद करके उसके बाद में अपनी सुविधा देखना, इसको सहयोग कहते हैं। सबसे पहले अपनी सुविधा नहीं करनी, हो सके तो दूसरे की सुविधा पहले देखनी है और फिर अपनी सुविधा देखनी है। कोई बात प्रसाद के लिए भी वही बात है, सबसे पहले जितने लोगों को पहले प्रसाद हो जाए उतना अच्छा है, हमें अगर कुछ नहीं भी मिले आइटम खत्म भी हो जाए तो भी ठीक है। इसका मतलब यह है कि यात्रा अगर सफल करनी है आपको तो खुद को पीछे रखे दूसरों को आगे रखना है, भगवान के दर्शन के लिए भी दूसरों को आगे करना है और हमें बाद में दर्शन करना है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपको ढूंढकर देखेंगे और जो दूसरों को धक्का मुक्की करके आगे जाएंगे उनको भगवान नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, भगवान अपने हृदय की भावना को देखते हैं। कितना मजबूत आप है और कितना लोगों को धक्का देकर आगे जा रहे हैं ये भगवान को इम्प्रेस नहीं करता है। सबको प्रेम से दर्शन हो और सबका होने के बाद मुझे हो, ये आपकी भावना है तो भगवान आपको दर्शन देंगे और भगवान आपको भी देखेंगे। आप तो भगवान को दर्शन करेंगे लेकिन भगवान आपको देखेंगे, क्योंकि भगवान का ध्यान आपकी भावना की ओर आकर्षित होगा। एक चीज है हमें भगवान को देखना है और दूसरा एक चीज है कि भगवान हमको देखें, इसलिए अंधे लोग भी मंदिर में आते हैं दर्शन करने। अब बोले अंधे क्यों क्या देखना है, नहीं, आधे लोग हाजिरी लगाने आते हैं ताकि भगवान उनको देखे, और आप दूर भी कहीं रहेंगे समझो, कुछ लोग दर्शन को नहीं आ पाए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था के लिए, और कुछ यहाँ पर सेवा है उनके लिए, दर्शन मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको देख रहे हैं क्योंकि वो सबकी सेवा में है ताकि सबको दर्शन हो, उनकी सुविधा हो, इसलिए वो पीछे रहकर मेहनत कर रहे हैं, बस की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ आगे जाकर एडवांस पार्टी में कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान सबसे पहले उनको देखते हैं, तो हमको इस तरह से भगवान को हमें देखने के लिए आकर्षित करना है, प्रेरित करना है अपनी नम्रता से और अपने सहयोग से। और धाम जो है ना वो दिव्य दिव्य चीज है, धाम भी एक व्यक्ति है, हमारे लिए तो एक भूमि है, जयपुर स्टेशन है और करौली है, ब्रागी पे और जाएंगे गलता जी जाएंगे, तो हमारे लिए वो लोकल ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थान है, लेकिन वो सब व्यक्ति हैं, वो इस धाम के रूप में हमारी सेवा करते हैं। तो नदियां सब देवियां हैं, वो जल प्रवाहित जल के रूप में आपकी सेवा करते हैं, पर्वत सरोवर कुंड भी व्यक्ति हैं, तो वैसे धाम भी व्यक्ति है, और उस धाम पर हम चल रहे हैं, है ना, चल रहे कि नहीं? अब तो 4 इंच ऊपर तो नहीं चल रहे ना, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह, उनका रथ और उनके कदम जो है वो भूमि से 4 कदम ऊपर चलते थे, क्योंकि वो सत्यवादी थे, धर्मशील राजा थे, इसलिए उनका कभी भी रथ जो है वो जमीन को स्पर्श नहीं हुआ, 4 फीट 4 इंच 4 उंगली कहते थे उस समय जमीन के ऊपर चलते, लेकिन हम लोग तो अपने पैर जमीन पर रखकर चल रहे हैं, यानी कि धाम के ऊपर हम चल रहे हैं। ये सब धाम जितने भी है ना, ये बलराम जी के विस्तार है, बलराम जी के विस्तार स्वरूप है, इसलिए हम धाम में आते पहले प्रणाम करते हैं कि माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, हमारा वंदन स्वीकार कीजिए, हम आपके ऊपर चल रहे हैं। और वो धाम व्यक्ति जो है वो आपके चेतना से प्रतिसाद देते हैं, द धाम पर्सनैलिटी रिस्पॉन्ड्स टू योर कॉन्शियसनेस, जैसी आपकी भावना है वैसे धाम आपको प्रतिसाद देता है, वैसे धाम आपको लाभ देता है, वैसे धाम आपको कृपा भी देता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो चेतना है, बाकी सब कुछ बाहरी है, क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो व्यवहार जो हमारा है वो हमारे अंदर की मति जो है उस पर आधारित रहता है। हमारी अंदर की चेतना क्या है, स्वार्थी है कि परमार्थी है, इस पर हमारी धाम का जो प्रतिसाद है वो डिपेंड करता है। इसलिए आप सब लोग एक यात्री बनकर चलिए, सफर करने वाले लोग बनकर मत चलिए, भगवान को ढूंढने वाले लोग बनकर चलिए, भगवान को खोजने वाले बनकर चलिए, और जो भगवान को खोजता है उसका व्यवहार स्वार्थी लोगों से अलग होता है। आप मानते हैं इस बात को? तो यहां पर इंद्रिय भोग करने आया, मजा करने आया, मस्ती करने आया है, उसका भाव अलग रहता है, और जो भगवान को खोजने के लिए आया है, भगवान को सुनने के लिए आया है, भगवान को देखने के लिए आया है, भगवान के बारे में सेवा करने के लिए आया है, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए आया है, उसकी चेतना अलग रहती है, और भगवान उसी पर रिझते हैं जो उनके और उनके भक्तों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो सेवा जो है वो यात्रा का एक प्रधान स्थाई भाव है, स्थाई भाव का मतलब है मूलभूत भावना है। भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का ध्यान आकर्षित करना है, भगवान से संबंध जोड़ना है यात्रा के माध्यम से, तो सेवा सबसे पावरफुल ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा कार्य है, इससे हम तुरंत भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए एक दूसरे की सेवा करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके एक दूसरे को सुविधा आनंद सेवा करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर भगवान आप पर रिझेंगे। और यहां पर बहुत स्थान है जहां पर आप जाने का प्रयास करेंगे, हर स्थान की अपनी अपनी एक विशेष कथा है, और हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जिनका मंत्र हमने बोला ना, नमो सच्चिदानंद नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, वो हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उनके पिताजी हैं और उनके परम गुरु गुरु भी हैं, बस हमारे से 5वीं पीढ़ी है वो आगे वाली पूर्वज। तो वो कहते हैं कि धाम जो है वो भक्तों पर कृपा करता है और भक्तों पर कृपा करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, और हर एक धाम की जो कथा है उसी कथा के माध्यम से धाम की कृपा प्रकट होती है। इसलिए आप बस में सो सकते हो, जरूर सो जाइए, प्रॉब्लम नहीं कर, थक गए हो सुबह जल्दी उठे हो, लेकिन कथा जहां पर हो रही है वहां पर आपको जागरूक रहना है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से जो कथा भगवान से अभिन्न है उस कथा के माध्यम से वो धाम अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। इसलिए सारी आपकी जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, वो आपको कथा के समय जागरूक रखनी है। हाँ, और कहीं डिस्चार्ज नहीं करनी उसको। इसलिए अगर आपके आजू बाजू में कोई सोता हो, शोर हो सकता है, शरीर थक गया हो, तो बीमार हो या कोई ऐसे बीमारी लेकर चल रहा हो, तो आप लोगों को बता देना कि अगर मैं सो गया मुझे जगाना, और आपने बताया भी नहीं है फिर भी आप उसको जगाना, और जगने वाले को बुरा लगना नहीं चाहिए कि अरे क्या समझते हो, मैं तो ध्यान से सुन रहा था, आपको क्या पता है, मैं तो मग्न होकर सुन रहा था, ऐसे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। वो आप पर एक कृपा कर रहे हैं, ये सोचो कि आप शायद सो गए हो तो आपको जगा रहे हो, ताकि पूरी भगवान की कृपा कथा के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। हमारी जो यात्रा है ना वो मत्था टेक यात्रा नहीं है। आपको पता है मत्था टेक यात्रा, वो ट्रैवल्स वाले बोलते हैं कि अभी यहाँ उतर जाओ, ये चार जगह का नाम आपको दे रहे हैं, चिट्ठी पे दिया है, जाके प्रणाम करके आ जाओ। उसमें कोई भी बताते नहीं मंदिर कौन सा है, उसमें क्या कथा हुई थी, क्या लीला हुई थी, भगवान ने क्या किया था, बस जाना है, मत्था टेकना है और प्रसाद लेना है, चरणामृत लेना है और निकल जाना है। घर में जाके लिस्ट रहेगी आपके पास कि यहाँ यहाँ मत्था टेक के आए, लेकिन उसका महत्व आपको नहीं पता चलेगा। हमारे गुरुदेव की ऐसी कृपा है, जो उनकी गुरुदेव की कृपा भी थी और उनके भी गुरुदेव भक्ति सिद्धांत जी महाराज भी अपने भक्तों को यात्रा पर लेके जाया करते थे, और हर जगह बैठकर संक्षेप में क्यों ना हो सकता है विस्तार में ना हो, लेकिन बैठकर उस जगह का महात्म्य समझाते थे। केवल कथा नहीं समझाते थे, उसका महात्म्य, उसका गौरव समझाते थे, और केवल गौरव समझाते नहीं थे, लेकिन उसमें से हमको क्या सीखना है, हमारे लिए टेक होम मैसेज क्या है, हमारे लिए संदेश क्या है जो हमको ले जाना है साथ में उसके, वो भी बताते थे, और उसके आगे जाकर उस जगह बैठकर क्या प्रार्थना करनी है वो भी बताते थे। ये सब तीनों कदम पूरे होने के बाद में वो कथा पूरी हो जाती है, और उसके बाद ही जब आप वैसी प्रार्थना करते हो और उस संदेश को ग्रहण करते हो तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। इसलिए बार बार हम दोहराते हैं, यात्रा पिकनिक नहीं है, यात्रा भगवान की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप लोग अभी और आपको विनती किया था मैंने, सब लोगों के हाथ में पेन और नोटबुक होना चाहिए, जागरूक रहने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप लिखते रहेंगे जो वो सुन रहे हैं तो नींद नहीं आ सकती आप, और ऐसे बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से नींद आएगी, क्योंकि कथा लंबी होगी तो कथा बोलने वाला तो जगा रहेगा क्योंकि वो तो बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कथा सुनने वाले सो सकते हैं, तो इसलिए नोट्स बनाइए। उस नोट्स से आपको आगे भी याद आएगा कि हमने वहां बैठकर क्या सुना था और क्या आपको अच्छा लगा था। अगर बच्चे बीच में बोल रहे हैं तो उनको आप पीछे लेके जाइए, यात्रा कथा में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये सहयोग जो है ये आपको यात्रा को सफल कराएगा, और यात्रा में जब जाएंगे आप दर्शन करने के लिए तो हर जगह पर आपके तरफ से जो आपने पैसे दिए हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा उस जगह दान में जाएगा, लेकिन आप भी अपने जेब में से कुछ ना कुछ छोटा मोटा दान वहां देना चाहिए। कारण क्या उसका, क्योंकि अगर हम जाएंगे और आपको मैदान दिखाएंगे, बताएंगे कि यहां पर ना राधा गोविंद जी का मंदिर हुआ करता था, अभी वो समय के साथ नष्ट हो गया है, तो क्या होगा, आप मैदान दे देंगे और क्या लाभ होगा आपको, कुछ नहीं लाभ होगा। हो सकता है कथा बताएंगे और आपको भाव जागरूक करेंगे, लेकिन कथा बताने के बाद मंदिर भी रहेगा वहां पर तो ज्यादा लाभ होगा ना आपको, तो वो मंदिर है आज वहां पर, और कई सैकड़ों सालों से कुछ लोगों ने पीढ़ी जात एक के बाद पीढ़ियों ने उसको संभाल के रखा है, केवल संभाल के रखा नहीं है, बड़े गौरव के साथ संभाल के रखा है, बड़े शान के साथ में संभाल के रखा है, बड़े अच्छे श्रृंगार के साथ संभाल के रखा है, पूरे वैभव के साथ संभाल के रखा है। तो उनके प्रति हमारा भी भाव होना चाहिए कि आपने, हम आए आपको देखने के लिए, आपने कुछ सुंदर चीज बना के रखी है, संभाल के रखी है, उस भाव से आपको कृतज्ञ भाव से वहां पर कुछ ना कुछ देना चाहिए। और यात्रा जो है ना, वो देने को सीखने के लिए यात्रा होती है। यात्रा में हमको दान देने का भाव सीखना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ ले रहे हैं भगवान से, है ना, हवा ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, भूमि आपको अन्न दे रही है, और मकान मिल रहा है रहने के लिए, उसके साधन भी मिल रहे हैं, लकड़ी मिल रही है, सीमेंट मिल रहा है, ये सब पृथ्वी और प्रकृति हमको देती है। तो हम केवल ले रहे हैं, बचपन से जब जन्म हुआ है तब से माँ का दूध पी रहे हैं, माँ से सेवा ले रहे हैं, कितना सारा चीज कर रहे हैं। तो जब समझ में आएगा हमको, जब समझ वाले हो जाएंगे, हम समझदार हो जाएंगे, तब से हमको देना आरंभ करना चाहिए। देना, देने वाला वही होता है जो समझता है कि मैं कुछ प्राप्त कर चुका हूं और मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मुझे भी रिस्पॉन्स में कुछ देना चाहिए, वही व्यक्ति दे सकता है। इसको नॉलेज है, इसको ज्ञान है कि मैंने बहुत चीज प्राप्त कर ली है और आगे भी कर रहा हूं, जीवन को चलाने के लिए बहुत चीज मैं लेते रहूंगा, तभी जीवन चलेगा। तो इस जीवन में प्रतिसाद भी होना चाहिए, रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। इसलिए दान जो है ना, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दान ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी नहीं दे सकते, क्योंकि वो कमाते नहीं, तो भगवान के भजन में जीवन समर्पित कर चुके हैं। कमाने वाला कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। इसमें ही पति पत्नी कमाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। और गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और उनका आश्रम मतलब मंदिर, उनको चलाने के लिए दान देना हमारा कर्तव्य है। जब हम दान देंगे गृहस्थ लोग, तो दो चीजें होगी। एक तो हमारा धन जो है, वो हो सकता है कोई गलती से चोरी करके, कोई चिटी, कोई गलत तरीके से हम कमाते होंगे, या काम चोरी करते होंगे और पगार लेते होंगे शायद, तो वो धन कमाने के अंदर पाप होता ही है। बिना पाप के कलयुग में कोई धन कमा नहीं सकता है। उस पाप को नष्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए गृहस्थों को हमारे इनकम का कुछ हिस्सा दान भी देना चाहिए। वो गृहस्थ जीवन का एक अविभाज्य अंग है। तो एक तो होगी हमारे धन की शुद्धि और दूसरा होगा मंदिर का लालन पालन। हम लोग दान देंगे तो मंदिर चलेगा। मंदिर के पुजारी लोग और कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग में मंदिर में लोग दान इनफ नहीं देते हैं, इसलिए पुजारी लोग पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब भी कर लेते हैं और शाम को आके ड्यूटी वर्कशिप कर लेते हैं। ये कलयुग का एक बड़ा दोष है। अभी आप वृंदावन में जाएंगे राधा गोविंद मंदिर में, तो सब पुजारी बाहर एम्प्लॉयमेंट है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, और टर्न बाय टर्न भगवान की सेवा करते हैं। क्या करेंगे बेचारे, उतना धन नहीं आ रहा है मंदिर चलाने के लिए, तो चलाना कैसे, और परिवार में चलाना, वो कैसे चलाना, भीख तो नहीं मांग सकते सब लोग। इसलिए हमको वो दान देना चाहिए, और देने से कभी भी कम नहीं होता है। भगवान की लीला में बहुत कथाएं हैं, जो भगवान को देता है उसका खुद का भंडार भर जाता है। जो पेड़ अपना फल लोगों को देता है, उस निकाले हुए फल के जगह पर नए फल आते हैं, और अगर फल को थोड़ी तोड़ेंगे तो वहां पर नए फल नहीं आएंगे। ये सृष्टि का नियम है। तो पेड़ कैसा होता है, अपनी शाखा भी देता है, अपने पत्ते भी देता है, अपना फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। लकड़ी कैसे देता है, सर्दियों में लकड़ी देकर वो जलकर उष्णता निर्माण होती है, और गर्मी में वही पेड़ जो है खुद गर्मी सहन करता है, आपको छाया देता है। सर्दी में खुद जलता है, आपको गर्मी देता है, वो खुद बर्फ में रहता है, ठंड में रहता है। तो एक वृक्ष जो है, वो ऐसे कहा गया कि सबसे निचली योनि का जीव है, उसकी चेतना सबसे लो होती है, और सबसे जिसकी चेतना सबसे निम्न है उसका समर्पण कितना श्रेष्ठ है। वो सब कुछ दे रहा है, जब मर जाता है तो भी उस लकड़ी का हम भोजन बनाने के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे घर बनते हैं, उससे पेपर बनता है, शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ बनते हैं, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। LIC नहीं, वृक्ष का त्याग, वृक्ष की सेवा। हम तो मनुष्य है, सबसे ऊंची चेतना वाली है। तो अभी आपके पास नोटबुक है, तो इस यात्रा में हम 5 और 3 ये विषय समझने का प्रयास करेगी वो आप लिख लीजिए। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के मार्ग में 64 तत्व बताए हैं, 64 प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। उसमें उन्होंने 5 तत्व जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बताए, और वो 5 तत्व जो पालन करेगा उसको सहजता से भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं देख रहा हूं बहुत लोगों के पास पेपर और पेन नहीं है, लेकिन कल से जरूर लेके आना। मैं कल इस बात को दोबारा दोहराऊंगा आपके लिए, ये आपके हित में है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ना वो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। ऐसे ही खाना पीना सोना सेक्स करना और रक्षा करने के लिए नहीं दिया गया, तो जानवर लोग भी जीते ऐसे। तो 5 तत्व जो है वो लिख लीजिए आप। सबसे पहला है साधु संग, भगवान के भक्तों का संग। दूसरा तत्व है भगवान के नाम का जप। तीसरा तत्व है भगवान के विग्रह की पूजा, यानी कि डीटी वर्शिप। अरे नोटबुक नहीं हो तो क्या, मोबाइल तो है ना आपके पास, उसको खोलिए उसमें टाइप कीजिए। बाकी सब लोग हम आधुनिक तकनीक अपनाते हैं है ना, पिक्चर भेजने के लिए, फोटो भेजने के लिए, फिल्म भेजने के लिए, और क्या क्या करते हैं, व्हाट्सएप टॉक करते हैं, फेसबुक टॉक करते हैं, इधर पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। लेकिन जब प्रवचन का नोट बनाने का काम आता है सोचते हैं क्या करें। तो तीसरा क्या बताया मैंने, भगवान के विग्रहों की पूजा। चौथा है भागवत श्रवण, यानी कि भगवान के विषय में जो ग्रंथ है उसके बारे में अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति। और पांचवा है भगवान के धाम में निवास, धाम निवास। धाम निवास जो है वो कई प्रकार का होता है, मैं बताऊंगा। ये हो गए 5 तत्व जो हम धीरे धीरे करके पूरी यात्रा में आपको समझाएंगे। और 3 अलग प्रकार के स्टेप्स हैं भक्ति में। एक है संबंध, सबसे पहला है संबंध, भगवान से संबंध करना। दूसरा है अभिधेय, अभिधेय संबंध होने के बाद में भगवान की सेवा शुरुआत करना, भगवान की सेवा में लगना, उसको अभिधेय कहा गया। और तीसरा है प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है सेवा में परिपूर्णता प्राप्त करना, सेवा में परफेक्शन प्राप्त करना। और ये 3 तत्व जो है वो समझना इस जयपुर धाम का एक विशेष अंग है। वृंदावन धाम और जयपुर उसमें कोई अंतर नहीं है, इसको गुप्त वृंदावन भी कहा गया है, इसको प्रति वृंदावन भी कहा गया है, क्योंकि वृंदावन के जितने भी प्रमुख विग्रह हैं वो ओरिजिनल विग्रह सब जयपुर में हैं। इसलिए जयपुर में आने के बाद में सब लोग राधे राधे ही बोलते हैं, उसका भी आपको इतिहास बताएंगे। लेकिन 3 प्रमुख जो यहाँ के मंदिर हैं जो हम दर्शन करेंगे, प्रमुख 3, 7 है वैसे, लेकिन प्रमुख 3 जो मंदिर है वो एक है राधा मदन मोहन जी का, इसका मंत्र हमने बोला ना, जयताम सुरतो मंगोल मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदम भोज राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन जी संबंध के देवता है। और दूसरा मंत्र बताया गोविंद देव का, दिव्या वृंदारण्य कल्पतरुमादः श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। ये गोविंद देव का मंत्र है, और गोविंद देव अभिधेय देवता है जो हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। और तीसरा मंत्र बताया श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वदैन गोपीन गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। और गोपीनाथ जी ये प्रयोजन देवता है, ये भगवान की सेवा में लगे हुए व्यक्ति को उसका परफेक्शन देते हैं, सारी त्रुटियां निकाल कर उस सेवा को परिपूर्ण अवस्था में पूर्ण शरणागत 100% सेवा में लगाने की प्रेरणा देते हैं। तो ये 3 तत्व जो है ये जयपुर यात्रा के प्रमुख तत्व हैं। इसको समझे बिना अगर आप मुंबई जाते हो तो एक तरह से आपकी यात्रा असफल है, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ध्यान से इन 3 विषयों को समझेंगे, उसको हम ऐसे आपको एकदम बोरिंग तत्व ज्ञान के रूप में नहीं समझाएंगे, तो कथा के रूप में समझाएंगे, आपको सुनने में बोर नहीं होगा, इस तरह से समझाएंगे ताकि कथा भी आपको समझ में आ जाए और कथा के माध्यम से बीच में से उत्तर को भी आपको समझ में आ जाए और उस प्रकार से आपको याद भी दिलाएंगे कि इस मंदिर में क्या प्रार्थना करनी है, ताकि वो प्रार्थना भी आप लिख लो उस समय और प्रार्थना करो भी और उसका फल भी प्राप्त करो। अभी धाम की यात्रा जो है वो अलग अलग प्रकार की होगी, धाम वास है ना। कुछ लोग भगवान की कृपा से धाम में जन्म लेते हैं, जब भगवान की असीम कृपा होती है, कई जन्मों से हम भगवान की सेवा में रहते हैं, प्रयास करते हैं, प्रामाणिक प्रयास करते हैं, नम्रता से करते हैं, दुर्गुणों से दूर होने का प्रयास करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी आधा होता है, पौना होता है, पाव होता है, तो दोबारा जन्म लेते हैं और वहां से शुरू करते हैं आगे, फिर अगले जन्म में आधा पूरा करते हैं, हो सकता है कई जन्म लगते हैं कभी कभी। तो उसके बाद अगर भगवान प्रसन्न हो गए आपके प्रयास से, आपने कई जन्म प्रयास किया, तो हो सकता है भगवान कृष्ण राधा रानी आपको धाम में जन्म दे। तो जन्म ही धाम में हो गए तो आप जन्म से धाम वासी, वही का जन्म है, वही का खाना पीना है, वही का रीति रिवाज, जन्म से पहले सास से आप धाम में रह रहे हैं। दूसरे प्रकार के धाम वास होता है जो जन्म तो भाग लेते हैं लेकिन एक दिन तय कर लेते हैं, बस हो गया अभी, और अपना जहां जन्म लिया है वो स्थान छोड़कर भगवान के धाम में घर खरीद लेते हैं और वहीं पर रहना आरंभ करते हैं और पूर्ववर्ती जीवन जो है वहीं पर गुजारते हैं, कि जो भी हो जाए, साइकिल पे चलाना होगा या कोई कम पैसे मिलेंगे, जो भी कुछ सेविंग में बहुत कम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यही रहेंगे और दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, अगर वो सोता होगा तो जगाना भी आपका कर्तव्य है, याद करना मैं आपको। तो उसको दूसरे प्रकार का धाम वास कहते हैं कि जो बाहर जन्म लिए हुए हैं लेकिन बाहर से धाम में आए हैं और वही रह रहे हैं और वहां का जो कल्चर है उसी को अपना रहे हैं, एकदम आत्मसात कर रहे हैं, एम्बाइड कंप्लीटली। और तीसरे धामवासी जो है ना वो हम हैं सब लोग, वो हम साल में एक बार आते हैं और कुछ दिन के लिए धाम में रहते हैं और कुछ दिन में दिन रात सुबह से शाम लेकर भगवान का श्रवण, भगवान के दर्शन, भगवान का दान धर्म, भगवान की सेवा उसी में लगते रहते हैं। अभी आपको कुछ 9 to 5 का ऑफिस जाना नहीं ना, कोई मीटिंग तो नहीं है यहाँ पर, कोई और कोई बिजनेस का काम तो नहीं है, सब कुछ छोड़कर आप आए हैं। 4-5 जो भी दिन मिलते हैं, जितने भी घंटे, जितने मिनट, जितने क्षण मिलते हैं, वो सारे भगवान के ही विषय में अलग अलग प्रकार से, हाँ, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का नोट्स बनाना, भगवान की कथा सुनना, दर्शन करना, उन्हीं के याद में रहना और रिविजन करना, आते जाते भक्तों से चर्चा करना, क्या देखा, क्या सुना, क्या इंपॉर्टेंट था, उसका रिविजन करना, इस मतलब भगवान के विषय में अलग अलग प्रकार से आप मग्न हो, उसको यात्रा कहते हैं। और वो भी धाम वास है क्योंकि आप भी धाम का कुछ दिनों के लिए वास कर रहे हैं ना, 4-5 दिन का, तो वो तीसरे प्रकार का वास है। और ये तीसरे प्रकार का वास अगर आप जैसे करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, अच्छी चेतना से कर रहे हैं, जैसे बताया गया वैसे कर रहे हैं, किसी का अपराध नहीं कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, नम्रता से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, जितना भी बताया जा रहा है वो सब कुछ पालन करके अगर सफलतापूर्वक करेंगे तो हो सकता है अगर भगवान प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर तो वो धाम आपके हृदय में प्रवेश करेगा स्मृति के रूप में, याद के रूप में, और आपके साथ आपके घर जाएगा, चाहे पुणे हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, किधर भी हो, जहां से भी आप आए। मतलब धाम को हृदय में बंद करके आप घर ले जा रहे हो अपने, और घर में भी उसी धाम की याद में अपना जीवन चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, लेकिन धाम आपके हृदय में बसा हुआ है, उसकी स्मृति बसी हुई है। बच्चे जिनके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को शांत रखें। तो वो धाम अगर आपके हृदय में बैठकर घर गया तो आपकी यात्रा सफल हो गई। और क्या शुरू हुआ, चौथे प्रकार का धाम वास शुरू हो गया। चौथे प्रकार का धाम वास वो है कि जहां भी आप रह रहे हो धाम में ही रह रहे हो, अपनी भावना से और चेतना से आपका व्यवहार भी वैसे ही है, हमेशा भगवान के धाम की स्मृति, भगवान का चिंतन, बना रहेगा उसका व्यवहार भी वैसे रहेगा, किसी का अपराध नहीं करेगा, किसी का द्वेष नहीं करेगा, लोगों की सेवा करते रहेगा। तो चौथे प्रकार का धाम वास हम सबको करने को सीखना है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा जन्म धाम में नहीं हुआ है। हो सकता है दुर्भाग्य से हम धाम में शिफ्ट भी नहीं हो सकते, कोई मजबूरी हो सकती, लेकिन धाम में जाकर 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन की यात्रा करके धाम में धाम को जरूर हृदय में बिठा कर आप घर ले जा सकते हो। उतना तो भगवान ने सबको सुविधा दिया है। आप नहीं ले जाएंगे वो आपकी इच्छा है, हाँ नहीं उसको हृदय में प्रवेश करने देंगे अपने वर्ताव से, तो वो आपकी इच्छा है, आपका स्वतंत्र है वो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपका प्रयास है, आपका व्यवहार वैसा है, तो धाम बड़ी खुशी से आपके हृदय में प्रवेश करेगा, सारी लव के साथ, सारी लव की स्मृति के साथ हृदय में बस जाएगा आपके। और जितना आप बंबई जाके चिंतन करोगे उतना वैसे ही रहेगा। तो हमारे प्रभुपाद जी वैसे धाम वासी थे, वृंदावन को हृदय में लेकर वो अमेरिका गए और सब लोगों को वृंदावन का वितरण किया उन्होंने, एक बार वृंदावन बांटा उन्होंने सब लोग, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने उदाहरण से उन्होंने लोगों को धाम दिया। और इतना शुद्ध हृदय से दिया कि लोगों ने भी लिया, न केवल लिया वो आकर्षित हो गए और वो खुद धाम में चले आए वृंदावन में, वो सच्चे धामवासी। तो आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं, आह्वान करता हूं, अपील करता हूं आपसे कि आप चौथे प्रकार के धामवासी बनने का प्रयास कीजिए। और वो बनने के लिए आपको ये 5 दिन मिल रहे हैं। हो सकता है इसमें एक पहली बार आप इतने सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको ये बनना है, आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है, तो हो सकता है कुछ हद तक आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कथा में ध्यान से बैठना है। नंबर 1, कथा समाप्त हो गई तो बेफजूल की बातें नहीं करना है, कहाँ साड़ी अच्छी मिलने वाली है, वो जयपुर में मैंने सुना है वो मिलती है, वो मुजरी जयपुर में अच्छी मिलती है, वो जयपुर में वो मिलता है, वो भोजन का आइटम वो आता अच्छा मिलता है, मैंने सुना है, वहाँ जाना ही है मुझे, हाँ या तो इसने ऐसा कहा, उसने जगह नहीं दिया, उसने तो सब प्रसाद खत्म कर दिया, हमारे लिए रखा ही नहीं, ये सब जो दिमाग को परेशान करने वाली बातें हैं वो छोड़ दीजिए आप, और जो सुना है उस पर चिंतन कीजिए, और कोई मिला उसके साथ चर्चा कीजिए। बस में बैठे हो तो कल क्या सुना वो चर्चा कीजिए, अभी सुनकर क्या आ रहे हैं, अगली जगह जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए। ट्रेन से वापस जा रहे हो, फ्लाइट से वापस जा रहे हो, उधर भी आपको 18-20 घंटे मिलते हैं ना, तो न्यूज़पेपर मत पढ़िए उधर बैठ के, हाँ मैगजीन मत पढ़िए, इसी के बारे में चर्चा कीजिए। नोटबुक निकालिए, अगर नोट लिखा है तो नोटबुक निकालिए और देखिए फर्स्ट डे कहाँ गए थे, सेकेंड डे कहाँ गए थे, थर्ड डे कहाँ गए थे, फोर्थ डे कहाँ गए थे, कौन से 5 तत्व थे, कौन से 3 तत्व थे, डिस्कस कीजिए उसके बारे में, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में। आप ऐसा करके जो हृदय में थोड़ा बहुत धाम आया है ना उसको हम फिट कर रहे हैं। हम लोग अभी कभी यज्ञ पे कुंड बनाया ना, तो पहले ईट रख दिया, कुंड का शेप हो गया, फिर क्या करते हैं गोबर का लेप करते हैं उसको टाइट करने के लिए। ये बिल्डिंग कैसे बनी है, ईट तो रखी है, सीमेंट का कॉन्क्रीट का लेप किया उसके ऊपर, इसलिए वो फिट हो गया उसके। अभी आप बैठे हैं तो गिर नहीं रहा नीचे वो, है ना, अगर ऐसे रखते हैं तो आप गिर जाते नीचे। तो वो चिंतन जो है आपका है वो आपके हृदय में बसे हुए धाम को फिट करने जैसा है। बंबई जाके भी कुछ समय निकालिए रोज और चिंतन कीजिए कि कहाँ गए थे हम, क्या दर्शन किया था, उस दर्शन को हृदय के पटल में उतारिए। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं, तो भगवान को देखेंगे ना, गोविंद जी को देख रहे हैं, अच्छी तरह निहारिए उनको चरण से लेकर ऊपर तक, हाँ उल्टा नहीं, चरण देखिए फिर ऊपर जाइए, सब देखिए, हाथ देखिए, मुरली देखिए, कैसे खड़े हैं, कैसे गर्दन हैं, कैसे मुकुट पहना है, सब देखिए। उसके बाद आंख बंद कर दीजिए और देखिए कि आपको याद आ रहा है क्या, फिर खोलिए और फिर देखिए, कुछ भूल गए तो फिर देखिए, कौन से रंग का मोजा पहना था हाथ में, हाँ गुलाबी रंग का, अच्छा भूल गया था, 4-5 बार कीजिए और उस छवि को अपने हृदय के पटल में पूरी तरह से स्थापन करने का प्रयास कीजिए। लौट के घर आएंगे रूम में फिर याद करने का प्रयास कीजिए, इस तरह से वो याद रहेगा आपको कि ये गोविंद जी हैं, ये गोपीनाथ जी हैं और ये मदन मोहन जी हैं। अगर आपको याद आए ना तो आप बड़े भाग्यशाली हो। एक गोस्वामी है वृंदावन के, जो मुझे बताते थे, अभी बताते हैं कि भगवान का श्रृंगार क्यों करते हैं। एक लुंगी पहना लो भगवान को, क्या है, ऊपर से वस्त्र डाल दो, खत्म। एक माला पहना लो, क्या है इसमें। कई हजारों मंदिर भारत में ऐसे हैं, अभी भी एक सफेद कपड़ा गंदा पहनाते हैं नीचे, एक ऊपर डालते वस्त्र, वो भी गंदा रहता है, और एक ऐसी छोटी सी गोलू की जो 5 रुपए की भी नहीं होती पहना देते हैं, एक अगरबत्ती घुमा देते हैं, बस लोगों को देख पैसा डालो, डालो उधर पैसा, भगवान है। और कुछ मंदिर में जाएंगे तो इतना श्रृंगार करते हैं कि कितने कंगन पहने हुए देखने को समझ में नहीं आता आपको, इतने कंगन पहने हुए, इतने पायल पहने हुए, इतने हर उंगली में अंगूठी पहनी हुई है, हर हाथ में अंगूठी पहनी है, एक एक अंगूठी में भी 3-3 अंगूठी पहने, ऐसा श्रृंगार करते हैं, बालों में इतने सारे श्रृंगार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपका ध्यान अगर किसी अलंकार पे अटक गया, कुछ भा गया आपको, अच्छा लगा आपको, तो वही आप याद करेंगे ना घर जाके, तो भी आपका दर्शन धन्य है, सफल है आपका दर्शन। वो राधा गोविंद जी का दर्शन करते थे तो गोस्वामी बोलते हैं, देखो देखो अच्छी तरह निहारो, हो सकता है आपको उनका बाजू बंद पसंद आ जाए, कैसे खड़े हैं देखो, हाथ में कैसे गहना पहना है। अगर आपका दिल कहीं अटक गया किसी गहने में, तो आपका दर्शन सफल हो गया, क्योंकि जहां आपका दिल अटकेगा वही आपको याद आएगा, है ना, कि हाँ वो मेले में एक सुंदरी दिखी थी, वो दिल ले गई मेरा, है ना। ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में, वैसे भगवान के विषय में होना चाहिए, उनका दर्शन हमारा दिल छीन के ले जाना चाहिए, तो ही वो दिल जो है ना वो उनका हो जाएगा और वो कृपा आपको मिलेगी। तो दुनिया की चकाचौंध में तो सब लोग अपना हृदय खो बैठते हैं, कभी किसी सुंदरी पर, कभी सुंदर व्यक्ति पर, कभी वस्तु पर, कभी कोई चमकाती हुई गहना चाहिए आपको, कभी कोई वस्तु चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, सब जगह हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है। लेकिन वही ध्यान अगर, वही चेतना भगवान की ओर आकर्षित हो गई, तो हमारा जीवन सफल हो गया, जितना दर्शन किया वो सब सफल हो गया। तो कोशिश कीजिए आप कि आप चेतना से यहाँ रहो, शरीर से तो आप पहुंच ही चुके हो भगवान की दया से, लेकिन चेतना से आपको प्रवेश मिले, चेतना से आपको कुछ चीज जिनको छुए, चेतना से आकर्षित हो जाए कुछ आपका मन, ये सारा जो प्रयास आपने किया है, इतना छुट्टी निकाला है, इतना समय निकाल के पैसे भरे हैं, रूम बुकिंग किया है, इतना अरेंजमेंट किया है, इतने लोगों ने कितने महीने से मेहनत किया है, वो सारा सफल तब होगा जब आप चेतना यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, है ना। पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया आपने, अभी कुछ डाल दिया पैसा, लेकिन चेतना जब इन्वेस्ट करेंगे ना तो भगवान आपके बनेंगे। यहाँ पर कोई भी ट्रेन का, फ्लाइट का रूम बुकिंग करके नहीं पहुंच सकता है, यहाँ पर पहुंचता है व्यक्ति तो भगवान की कृपा से पहुंचता है, और भगवान आपके साथ जाते हैं तो भी उनकी कृपा से आपके साथ जाते हैं, लेकिन चाहना आपके हाथ में। पहले चाहो तो सही कि मुझे ये चाहिए, मुझे 3 और 5 तत्व समझना है, मुझे ये दर्शन को याद रखना है, मुझे बम्बई में भी याद बंद करेगा तो याद आना चाहिए, ऐसे दर्शन करना है, ऐसे चाहो तो सही पहले, फिर जाके भगवान जो आप पर कृपा करेंगे, है ना। भगवान जो है ना वो आपकी इच्छा को प्रतिसाद देते हैं, आपको क्या चाहिए वो मिल जाता है, आप क्या चाहते हो वो हो जाता है। आज आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, आपने शायद 6 महीने पहले चाहा था कि हाँ भाई भक्ति विधान हॉस्पिटल के जयपुर यात्रा में जाएंगे, हमको जाना है, बहुत इच्छा है जाने की। वो इच्छा का परिणाम, उसके बाद इच्छा नहीं खाली हुई, इच्छा के बाद में कुछ काम भी किया है, फॉर्म भरा, कितने पैसे वैसे भरे, कितना रूम, कौन सा रूम बुकिंग किया, ट्रेन का बुकिंग भी किया, तैयारी भी किया, अप्लाई छुट्टी का अप्लाई भी किया, बहुत सारा आपने काम किया है। वो काम जो किया आपने उसका क्या मतलब है, आपकी इच्छा सही है इसका प्रूफ है वो, कि आपने उसके अनुकूल कुछ कार्य भी किया है, और उसके फल के रूप आज मेरे सामने आप बैठे हो, मैं भी आपके सामने बैठा। तो आज जो आपका जिंदगी चल रही है वो कहीं पहले इच्छा की थी उसका परिणाम है, और कल जो आपकी जिंदगी होगी, जो आज आप इच्छा कर रहे हैं वो कल आपकी जिंदगी होगी, ये सब इच्छा का प्रवास है। पूरी जिंदगी जो है ना वो इट्स अ जर्नी ऑफ डिजायर, आपकी डिजायर जो है ना आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जा रही है, याद रखना इस बात को। आपकी आज की जिंदगी आपकी पिछली इच्छा का परिणाम है, आपके भविष्य की जिंदगी आपके आज की इच्छा का परिणाम है, इसलिए आज आपके हाथ में है। भूतकाल तो गया, भविष्य तो अभी आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है, वर्तमान, अभी नाउ, यही आपके हाथ में है। और आज आप जो कुछ कर रहे हो उसका परिणाम कल मिलेगा, इसलिए आज अभी भगवान के लिए अपना हृदय अर्पण कर लीजिए, और जब कल आज हो जाएगा तो आज भी भगवान के लिए अपना हृदय अर्पण करते रहिए, और जब परसों कल होगा और कल वापस आज हो जाएगा तो तभी भी आप अपने आप को उसी भाव में रखिए। अगर ये पूरा जीवन का अभी, पूरा जीवन का नाव, पूरा जीवन का वर्तमान अगर आप भगवान की सेवा में लगाते रहे, भगवान के चेतना में, भगवान के चिंतन में, भगवान के विषय में लगाते रहे, तो आपकी एक यात्रा जो है ना वो भगवान की ओर ही चलती रहेगी। जीवन की यात्रा, चेतना की यात्रा भगवान की ओर चलेगी और वो यात्रा आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये पूरी यात्रा एक तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, जीवन की यात्रा। ऐसा नहीं कि केवल साल में 5 दिन आप आए, पूरा जीवन आपका एक यात्रा होनी चाहिए। किसकी यात्रा? भगवान के चरणों की ओर, भगवान के धाम की ओर, भगवान के दिव्य धाम की ओर, जहां पर हमको यद कत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। जिस धाम से लौटकर कोई दोबारा नहीं आता है, जन्म मृत्यु का कष्ट भोगने के लिए दोबारा नहीं आता है, उस धाम को जाने के लिए ये मनुष्य जीवन की यात्रा हमको दी है। कुछ लोग यात्रा मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग यात्रा में आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े बूढ़े हैं, कुछ लोग जवान हैं, लेकिन सब लोगों की यात्रा एक ही दिशा में चल रही है। कुछ लोग भटक जाते हैं फिर दोबारा आते हैं धक्का खाने के लिए, तो मनुष्य बन के आते हैं, फिर कुत्ता बिल्ली पंछी बनकर आते हैं। लेकिन हमको, अगर हम भाग्यवान जीव हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए हमको दोबारा इस जीवन में जीने के लिए नहीं आना है, हमको इसी जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करके, इस यात्रा को सफल करके भगवान के धाम में जाना है, जहाँ से वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो सकता है आपका पत्नी के साथ कोई जमता नहीं हो, पति के साथ जमता नहीं हो, आपका पड़ोसी खराब हो, आपका नौकरी करने वाला मालिक बहुत खराब है, दुष्ट है, आपका माहौल जो है वो दुष्ट लोगों से भरा हुआ है, पापी लोगों से भरा हुआ है। हो सकता है आपको रोग हो, कोई पीड़ा हो, मानसिक शरीर की पीड़ा हो सकता है, हजार प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में हो, लेकिन इन सबके बीच में भी आपको देखना यह है कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी मेरे जीवन का उद्देश्य बदलता नहीं है। अगर मुझे कोई कैंसर का रोग है तो मेरे जीवन का उद्देश्य कोई चेंज नहीं हो जाता है। अगर मेरा पत्नी के साथ जमता नहीं है तो मेरे जीवन का उद्देश्य चेंज नहीं होता है। अगर मेरा पड़ोसी पापी है, शराब पीकर दंगा करता है, तो भी मेरे जीवन का उद्देश्य बदली नहीं होता है। ये हर हालात में जीवन का उद्देश्य वही रहता है, भगवान की प्राप्ति। तो हमको भी सब कुछ नाटक जीवन में चल रहा है, हमारे आगे पीछे चारों ओर चल रहा है, फिर भी हमें अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित नहीं होना है। लक्ष्य की ओर अपना ध्यान पक्का होना चाहिए। कितनी भी समस्या, संकट, बाधा, अवरोध आ जाएगा, फिर भी आपका लक्ष्य जो है, आपकी नजर लक्ष्य की ओर होना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है और मैं प्राप्त करके रहूंगा ही। हमारा भारत इंडिपेंडेंट नहीं था ना पहले, लेकिन किसी ने ले लिया मन में कि भारत को स्वतंत्र करना ही है, किसी भी हालत में हमारा हक है और हम करेंगे उसको। बहुत साल प्रयास किया, कई लोगों ने जान दी अपनी, लेकिन लक्ष्य उनका क्लियर था, इसलिए एक दिन इंडिपेंडेंट हो गए। उस तरह से हमारे आत्मा परतंत्र है, भौतिक दुनिया में शरीर के परतंत्र में जी रही है, उस आत्मा को मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है। क्या कहते हैं गाना, जा रे उड़ जा रे पंछी बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है तेरे प्यारे। मतलब क्या हुआ, ये बड़ा स्पिरिचुअल गाना है, ये आपकी आत्मा के लिए गाना है। तो क्यों यहाँ तड़प रहे हो, इस दुनिया में क्यों रो रहे हो, क्यों धक्का खा रहे हो, क्यों कष्ट भोग रहे हो, उस बाहर के देश में जाओ जहाँ भगवान रहते हैं। यहाँ पर इतना कष्ट भोग के, रो रो के, पत्थर पे छरपटक के क्यों रह रहे हो, आप यहाँ के नहीं हो, ये जेल है, इस जेल में रह रहे हो, वहां जाओ जहां भगवान रहते हैं। जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। ये भी फिल्म का ही गाना है। क्या कहता है आपको, वही उस गगन की ओर आपको आकर्षित कर रहा है, बता रहा है कि आइए वहां चलिए, लौट के चलिए, यहां पर क्या है, सब पटक पटक के तो कितना खून भरा है यहाँ पर, फिर भी कुछ निकला नहीं यहाँ पर, वहां जाना चाहिए, अभी दिल भर गया। तो आइए, मैं सब ये सब भूमिका आपको तैयार इसलिए कर रहा हूं कि आपका मन जो है वो यात्रा के लिए तैयार हो जाए। 5 दिन का समय है, ज्यादा समय नहीं है, कुछ सोना भी है, फिर स्नान भी करना है, कुछ में भोजन करने के लिए लगाना है, कुछ में अपने आप को देखने के लिए भी करना है, ट्रैवलिंग भी करना है, शायद कुछ 15-20 घंटे आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेंगे। वो 15-20 घंटों आपको पूरा मिनट मिनट और क्षण क्षण समर्पित करना है इसके लिए। और फिर अगले साल और यात्रा होगी, उसमें भी आना है, और बीच में भी यात्राएं चलती रहती छोटी मोटी, उसमें भी आना है, समय निकाल कर। शास्त्र में कहा है कि गृहस्थों के लिए कम से कम साल में एक बार सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भगवान के प्रेमी भक्तों के संग में। ये सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे, ऐसे भगवत भक्तिविनोद ने कहा है कि जो भगवान पर प्रेम करते हैं, भगवान को चाहते हैं, ऐसे भक्तों के साथ में, प्रामाणिक भक्तों के साथ में भगवान के धाम में जाकर उनके संग में भगवान का दर्शन और भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये सब स्थाने हेरी वो अमी मैं देखना चाहता हूँ, प्रणय भक्ति संगी, जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रणय करते हैं, उनके संग में मैं ये करना चाहता हूँ। एक भक्त की प्रामाणिक तमन्ना होगी। आप लोग ऑलरेडी वो पहला कदम तो उठा चुके हो, अभी आपने जो कदम उठाया है उसको यश देना भी आपके ही हाथ में है, इसलिए मैंने ये भूमिका तैयार करने का प्रयास किया है।